Rama 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 Hare 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 Krishna. आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बुनाके में कार्तिक के मास में दामोदर मास में दीप भगवान को अर्पण करना और हरि कथा सुनना. ये जय नमामि बलाय कृष्ण कृष्णाय कृष्ण. अधिक भगवान के नाम का जप करना हरि कथा सुनना ये कार्तिक मास का विशेष फल है. तो 6 दिन पहले हमने दामोदर लीला के ऊपर चर्चा की थी 9वां अध्याय 10वें स्कंद का. आज उससे आगे बढ़ते हैं. जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये सुना कि वो जो 2 पेड़ अर्जुन के थे भगवान श्री कृष्ण बंधे हुए थे उखल के साथ रस्सी में, और वो दोनों पेड़ भी बद्ध जीव की तरह पेड़ यूनि प्राप्त कर चुके थे. वृक्ष यूनि बद्ध यूनि है. बद्ध यूनि में दोनों कुबेर के बेटे थे, पेड़ की तरह पेड़ ही बन के खड़े थे अर्जुन, और बंधे हुए भगवान दामोदर ने उन दोनों का उद्धार किया. इसलिए क्योंकि नारद ने उनको शाप दिया था, तो शाप का शब्द सुनकर और नारद के द्वारा परीक्षित महाराज की जिज्ञासा हृदय में ये प्रश्न उठा, और परीक्षित महाराज पूछने लगे सुखदेव गोस्वामी से. श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, कथ्यतां भगवान एतद्तव्यो शापस्य कारणम्. सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे भगवान, हे पूजन्य गुरुवर, उन दोनों को शाप देने का कारण क्या था? शाप शब्द परीक्षित महाराज को बड़ा भयभीत करता था, क्योंकि स्वयं भी सांप के कारण गंगा के तट के ऊपर बैठे थे, घर बार और हस्तनापुर का राज का परित्याग करके ब्राह्मण के बच्चे के शाप के कारण गंगा तट पे बैठे थे. तो शाप क्यों दिया इन दोनों को, क्या? और फिर यत्तद विग्रहीतम कर्म, ऐसा कौन सा घिनौना कर्म किया, फॉर्मिडेबल एक्टिविटी कौन सी उन दोनों ने की थी, जिसके कारण येन वा देवऋषि तमः, देवऋषि नारद को क्रोध आ जाए, अथवा तमोगुण, क्रोध तमोगुण की निशानी. जब आदमी तमोगुण में होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तो क्रोध करता है. ज्यादातर क्रोध करके झगड़ा कौन करते हैं? जो नशे में होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, तमोगुण के लोग करते हैं. तो परीक्षित महाराज कहते, ऐसा कौन सा घिनौना, घिनौना का मतलब ये जो शब्द है विग्रहीतम, बहुत नीच, ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने कर लिया, ये बौने बोले कि देवऋषि नारद को क्रोध आ गया. तो ये जिज्ञासा बहुत अच्छी कि दो, एक तो देवता के पुत्र, फिर नारद ने उनको शाप दिया, तो कोई कारण होगा, कौन सा वो गलत काम कर रहे थे कि नारद को भी क्रोध आ गया. सुखदेव जी उत्तर देते हैं, सुखदेव वाच, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, वो दोनों रुद्र शंकर के अनुचर हो गए थे. अनुचर का मतलब किसी के पीछे चलने वाले, अनु मतलब पीछे, चर मतलब घूमने वाले. इसका अर्थ ये हुआ कि वो भगवान शंकर के बहुत लाडले हो गए थे, उसके पीछे हर वक्त घूमते रहते थे. तो जैसे लट्टू बन के घूमते हैं ना किसी के पीछे आदमी, तो वो शंकर के अनुचर थे. और शंकर तो बहुत बड़ा महान देव है, उसके अनुचर हुए तो उसके कारण क्या हुआ? सुदृप्तो, बड़ा उनको अभिमान हो गया, हम तो शंकर के आदमी हैं। सुदृप्तो, एक तो अपने शरीर, देवता का शरीर था वो सुंदरता थी, और उसके ऊपर बड़े आदमी का हाथ सर के ऊपर आ गया, शंकर ने उनको अपना अनुचर स्वीकार कर लिया, तो सुदृप्तो, सुदृप्तो का मतलब बींग प्राउड ऑफ दैट पोजिशन एंड देयर ब्यूटीफुल बॉडी बॉडीली फीचर्स। प्रभुपाद कहते उनको अहंकार हो गया। दर्प पता है किसको कहते हैं? दर्पो, जो शीशा होता है ना जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, उसको हिंदी में दर्पण कहते हैं, मालूम है ना? दर्पण उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मुंह देख के आदमी को दर्प होता है कि मैं सुंदर हूं। चाहे कैसा भी हो, चलो मानो कि उसका रंग ठीक काला होगा तो कहेगा मेरी आंख तो अच्छी है ना, कम से कम आंख ठीक नहीं होगी तो कान को कुछ न कुछ तो उसमें से दर्प निकालेगा ही निकालेगा। तो ये दर्पण निकला ही शब्द दर्पण इसलिए है कि उसको देख के आदमी को दर्प होता है, मतलब अपने शरीर की किसी सुंदरता का अहंकार होता है। और दूसरा क्या था? धन आत्मजो, और बेटे थे बहुत बड़े धनवान के, कुबेर के बेटे थे, जो देवताओं का ट्रेजरर है, कोष अध्यक्ष है, धन का मालिक है। तो एक तो हो गए रुद्र के अनुचर, दूसरा सुंदर शरीर, उसके ऊपर दर्प अपने जवानी का और सुंदरता का, और फिर पैसे वाले का बेटा होना। तो ये तीन चार कारण थे उसकी। कहां थे ये? जब शराब दिया तो कहां थे ये? तब कहते हैं कैलाश उपवने रम्य, कैलाश पर्वत जहां भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शंकर ने आज तक घर नहीं बनाया, वो ऐसे ही कैलाश पर्वत पे रहते हैं, खुले मैदान में मां पार्वती के संग में। और उपवने, उसके पास में बहुत सुंदर वन है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुबेर जो है यक्षों का राजा है, और ये भी इधर ही रहते हैं, इसका भी आस्थान यही है कुबेर का। तो इधर ही कुबेर का घर भी पास में है, और यहां कैलाश के उपवन बहुत सुंदर है, उधर रम्य बड़ा रमणीक है, बहुत सुंदर है, एंजॉय करने जैसा है। और वहां मंदाकिनी, वहां मंदाकिनी नदी बहती है, गंगा का नाम है मंदाकिनी, एक धारा गंगा की थोड़ा स्लो स्लो चलती है, उसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी का मतलब मंद गति से चलने वाली। और दूसरी गंगा की धारा बहुत तेज चलती है, उसको कहते हैं अलकनंदा, कूदती हुई जाती है वो, उसको अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, और ये मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, और ये दोनों आपस में मिलती हैं, और नीचे आकर गंगा भागीरथी मिलती है, फिर गंगा इसका नाम होता है। तो ये सब तीनों गंगा की धाराएं हैं। तो मंदाकिनी के किनारे के ऊपर मधुत्त कटौ, मधुत्त कटौ, इतने सारे उनको बेनिफिट मिल गए, शंकर जी का आशीर्वाद मिल गया, पिता बहुत धनी है, शरीर बहुत सुंदर है, उपवन भी बहुत सुंदर कैलाश का है, मंदाकिनी का किनारा है, वहां बैठ के करनी चाहिए समाधि लगा के भगवान की भक्ति। लेकिन इन्होंने उल्टा क्या किया? मद उत्कटो, इनको मद हो गया, मद कहते हैं अहंकार को, मद उत्कटो, टेरिबली प्राउड एंड मेड। मद उत्कटो का मतलब बहुत बड़ा अहंकार उनको हो गया, और बहुत बड़ा जो है मद, मद कहते हैं नशे को, जैसे मद पीते हैं ना, शराब पीते हैं तो कहते मद होश है, तो होश गुम हो गए, तो मद उनको, मद उत्कटो, टेरिबली राइट, टेरिबली प्राउड एंड मैड। और इसके ऊपर एक और चीज हाथ आ गई उनको, क्या? वारुणीम मदिराम पीत्वा। ये नशा कम था, एक और शराब वारुणी बहुत जी भर के पी ली ऊपर में। वारुणी मदरा पीत्वा, वारुणी मदरा भी पी ली, और फिर मदा घोरणिता लोचनो, अब जो शराब जो पिया तो दोनों आंखें घूम रही है ऐसे, अब वो पक्के नशे के अंदर है। और उस नशे के अंदर क्या रहे, स्त्री जनेर, अब बाकी एक चीज रह गई थी, वो रह गई थी लड़कियां, वो लड़कियों के पीछे, लड़कियां आगे गाती हुई जा रही हैं, ये उनके पीछे भाग रहे, ठीक है। स्त्री जनैर अनुगाया अनुगायद भीष चेरितो पुष्पिते वने। अब इतना मद है, फिर ऊपर वारुणी पी है, आंखें नशे में भरी हुई हैं, और सुंदर लड़कियां आगे देवलोक की कन्याएं जा रही हैं और वो गाती जा रही हैं, ये उनके पीछे जा रहे हैं। प्रभुपाद ने इसके भावार्थ में लिखा है कि ये जो देवताओं के भक्त होते हैं ना, ये उनके लक्षण है। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि देवता के पास जाते काय के लिए, कि भोग मिले, कौन सा भोग मिले, स्वर्ग का भोग मिले मरने के बाद, और जीते जी यहां भोग मिले, और भोग क्या है दुनिया में सबसे बड़ा। आगे नारद जी कहेंगे सबसे बड़ा पैसा है, और पैसा है तो बाकी सब बुराइयां अपने आप जल्दी पास आ जाती हैं। तो ये बहुत पूरा भावार्थ प्रभुपाद ने लिखा, देवताओं की पूजा करने वालों के ये लक्षण है, बड़ा आश्चर्य है। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की पूजा करता था, रावण शंकर जी का पुजारी था, आप किसी भी देवता का पुजारी को ले लो, सब असुर, आपको एक एक देवता का पुजारी मिलेगा, सबको उनके अच्छी पूजा करेंगे, लेकिन भगवान के द्वेषी, भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। देवता की पूजा इसलिए करें कि भगवान की सेवा में लगना है तो ठीक है, देवता की पूजा इसलिए किए कि भगवान से लड़ाई करनी है, हमको शक्ति दो ताकि हम भगवान से लड़ाई करें, यही तो रावण और हिरण्यकश्यप कर रहे। अब इसके ऊपर एक और काम कर लिया, क्या है, अंतः प्रवेश गंगायाम, गंगा के अंदर प्रवेश किया नशे के हाल में, मद में, स्त्रियों के संग में। प्रभुपाद ने लिखा है लोग गंगा में पवित्र होने को जाते हैं, गंगा में लोग पाप धोने जाते हैं, और ये पाप करने गंगा में जा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं तो सब गंगा में स्नान करने जाते हैं वो कोई पवित्र होते हैं ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो गंगा में जाके अपराधी करने जा रहे। ऐसे एक महात्म्य में लिखा है कि गंगा में एक बार स्नान करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, और ये कथा शंकर जी बता रहे थे पार्वती को। पार्वती ने बोला गंगा के पास तो रोज लाखों लोग जाते हैं, इतने सारे सबको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता होगा क्या। शंकर जी ने कहा चलो पता करते हैं कौन गंगा स्नान करने जाता है। पार्वती सुंदर नारी बनी और शंकर जी कुष्ठ रोगी बन के बूढ़े पास में पड़े थे पार्वती के, और कहां बैठे थे जाके दोनों लोग, जहां गंगा के रास्ते स्नान करने जाते। हर स्नान करने वाले को पार्वती मां कहती है भाई अब गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान का तो फल है अश्वमेध यज्ञ का, आप वो फल अर्पण करें, ये मेरा पति कुष्ठ रोगी है, हाँ ये ठीक हो जाएगा। तो वो पहले देखें वो शंकर जी जो रोगी के रूप में पड़े हैं वहां, हाँ लेप्रोसी के रोग में, आंखें बंद करके फिर पार्वती की ओर देखें और मुस्कुरा के कहें इसको छोड़ो क्या करोगी, क्या रखा है इसमें, चलो गंगा स्नान कर दे। सबको ऐसे पूछे, हर एक शंकर की तरफ देखे नहीं, पार्वती को देखे, और फल देना तो दूर की बात है लेकिन उसकी नजर खराब होती जाए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर गांव से आता था, वो जा रहा था, उसको जाते देखकर शंकर जी पार्वती ने कहा भाई आप गंगा स्नान करने जाते हैं, हाँ मां शंकर, तो आप गंगा स्नान का फल देंगे, मेरा पति ठीक हो जाए। बोला हाँ मैं स्नान करके आता हूं। वो गया स्नान करके आया और ऐसे संकल्प करके बोला ये मैं गंगा का फल इस कुष्ठ रोगी के उद्धार के लिए देता हूं। और एकदम शंकर जी ठीक हो गए। शंकर जी मुस्कुरा के देवी पार्वती से पूछे सुनाओ कितने गए स्नान करने। बोला जा तो लाखों रहे थे लेकिन स्नान एक ही करने जा रहा था जिसको फल मिलेगा, बाकी तो सारे विफल जाएंगे क्योंकि वो तो पाप की भावना से जा रहे थे। पहले तीर्थ लोग जाते थे तो बड़ा भाव हुआ करता था तीर्थ का, लेकिन अब तीर्थों के अंदर पिकनिक के लिए लोग जाते हैं। और ये पिकनिक का पता कहां से चला, इनसे चला कि ये पिकनिक कर रहे थे, ये गंगा के किनारे पिकनिक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अंतः प्रवेश गंगायाम अम्बोज वन राजनी। गंगा के अंदर कमल खिले हुए थे और ये स्त्रियों के साथ गंगा के अंदर प्रवेश किया। चिकीर्ण तोर और फिर क्रीड़ा करने लगे, मतलब वाटर स्पोर्ट करने लगे। किसके साथ? लड़कियों के साथ। युवती भी, युवती मतलब जवान लड़कियों के साथ। कैसे लग रहे थे? गजावेवा, जैसे हाथी हो। हाथी को मूर्ख माना जाता है, हाथी मूर्ख होता है। हाथी को पकड़ते कैसे मालूम है ना, एक खड्डा खोदते हैं धरती में, उसके ऊपर घास डालते हैं और एक हथनी का लकड़ी का स्केच बनाते हैं जो हथनी लगती है। हाथी उस हथनी को देखता है जो नकली है और इतना मस्त होके उधर भागेगा हथनी को पकड़ने के लिए, हथनी तो होगी नहीं, वो खड्डे में जाएगा और फिर आके उसको हाथी को पकड़ के, इतना बड़ा हाथी पशु है शक्तिशाली। एक छोटा बेटा ऊपर बैठेगा, एक छोटा बच्चा बैठ के उसके ऊपर, और उसको कील मारेगा और बोलेगा इसको सलाम करो, वो हाथी ऐसे सूंड ऊपर करेगा, इससे रुपया मांगो, हाथी रुपया कटा करेगा। केवल हाथनी की शक्ल की बनी हुई मूर्ति के कारण गली गली में हाथी रुपया कटा करता हुआ और पावा बजाता हुआ देखा है ना हाथी को, हा? क्या कहें? तो हाथी मूर्खता की निशानी है, जड़ है। और ये हाथियों की तरह करेणों भी ही, जैसे हथनियों के साथ ही हाथी गया। वो गजेंद्र मोक्ष की कथा में आता है, गजेंद्र हाथियों का राजा था और बहुत सी हथनियों को लेकर वो भी ऐसे सरोवर में नहाने गया था त्रिकूट पर्वत के, लेकिन मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था। तो वो भी ऐसे, ये हथनियों के साथ गंगा, प्रभुपाद ने लिखा गंगा में लोग पवित्र होने जाते हैं। और ये गंगा तो तीर्थ स्थान में जाके सावधान होना चाहिए। हम जाते हैं तीर्थ में पवित्र होने को, लेकिन वहां तीर्थ के नियमों का पता नहीं है। जैसे 10 नाम अपराध है, ऐसे तीर्थ और धाम के भी अपराध है, उनसे सावधान होके वहां जाना चाहिए। वहां नहीं तो एक बार हरे कृष्ण बोलने का फल 1,00,000 बार बोलने के बराबर है, लेकिन एक छोटा सा अपराध करने का फल भी उतना ही भारी है। जितना फल मिलता है उतना दंड भी ज्यादा है। इसलिए धाम में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, जब जगन्नाथ पंडित को कह रहे थे जाओ तो वृंदावन में किसी ब्रजवासी से झगड़ा करना मत, क्योंकि ब्रजवासी को आप पहचान नहीं पाओगे, वो कैसे ओड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, तो आप कहीं झगड़ा मत करना। गोवर्धन पे चढ़ना मत, क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो शिक्षा चैतन्य, और ज्यादा उधर रहना मत, सिर्फ सनातन गोस्वामी के संग में रहना, क्योंकि भक्तों के संग में केवल तीर्थ में जाओ तो भक्तों के संग में रहो, भक्तों से थोड़े अलग हो गए तो तीर्थ में जितने साधु मिलते हैं बहुत शुद्ध साधु, उतने बदमाश भी तीर्थों में उससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तीर्थों के अंदर बेईमानी होती है, पंडे के रूप में बहुत बड़े बदमाश तीर्थों के गुंडे बैठे हुए सब कुछ छीन लेते हैं। तो तीर्थ में साधु के संग में सनातन गोस्वामी के साथ रहना, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को कहा था कभी उनका साथ मत छोड़ना। तो ये बड़ी शिक्षा महाप्रभु की है। और प्रभुपाद ने कहा वृंदावन जाओ कुछ दिन रहो, वहां से आध्यात्मिक रूप से चार्ज होके फिर जाके बाहर प्रचार करो, वहां ज्यादा रहोगे तो अपराध हो जाएंगे। धाम में ज्यादा नहीं रहना चाहिए जब तक आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से पक्का ना हो जाए। धाम में अपराध होने की बड़ी संभावना है। तो यहां अब आगे क्या कर रहे हैं, अब ये थी दोनों की गलती। क्या उन्होंने कर्म किया था गिनाओ ना, उन्होंने कर्म ये किया था कि नंगी लड़कियों के साथ नंगे गंगा के अंदर शराब पीकर जल विहार कर रहे थे, ये उनका अपराध था। अब उनकी किस्मत अच्छी थी, क्या किस्मत अच्छी थी, यद ऋच्छया च देवर्ष भगवान तत्र कौरव। हे महाराज परीक्षित, तो भगवान की इच्छा थी, यद ऋच्छा मतलब कृष्ण इच्छा से, भगवान की कृपा के रूप में नारद ऋषि वहां आए, वहां से गुजरे। संत साधु भगवान की इच्छा से जब कहीं से गुजरते हैं तो वहां उद्धार कर लेते। जैसे ही वहां से गुजरे, अपश्यन नारदो देवो, उन मूर्खों ने नारद को देखा ही नहीं, तो वो तो नशे में थे, नारद कैसे दिखेगा। खिबाणो संबुद्धता, क्यों नहीं देखा उन्होंने, खिबाणो दोनों नशे के अंदर थे, आंखें तो उनकी बंद पड़ी थी, लाल लाल पड़ी थी। और नारद जी ने उनको देख के उनकी स्थिति को समझ गए कि ये मूर्ख इस वक्त नशे में नहीं है, केवल नशा नहीं है लेकिन धन का भी नशा है। आगे नारद जी कहने कि सबसे बड़ा नशा है धन का। नारद की कल हम नारद गीत पढ़ेंगे, नारद की गीता, नारद जो यहां बोलेंगे उसको नारद का गीत बोलते हैं। तो आइए इसके बाद इसके श्लोक के भावात में प्रभुपाद जी इसके पर्पट में लिखते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। चाहे आदमी कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो लेकिन साधु का संग हो जाने से उसका उद्धार हो जाता है। चाकू के ऊपर आलू उल्टा गिरे या सीधा गिरे कटेगा, बेईमान हो या ईमानदार हो साधु के संग में आएगा तो सुधरेगा, क्यों साधु का काम ही सुधारना है। कैसा भी आदमी हो, बुरा आदमी हो तो साधु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो प्रभुपाद जाके हेपियों के संग में थोड़ी रहते। ये तो दो नल कुबेर और मणिगिर से चेतना महाप्रभु के लिए दो जगह ही माधाई थे, प्रभुपाद जी तो सैकड़ों जगहों माधाइयों के बीच में जो नशा भी पिया हुआ, बोतल भी हाथ में उठाई हुई, लड़की के गले में बांह भी डाली हुई थी, उनके बीच में बैठ के कीर्तन किया प्रभुपाद उनका उद्धार करने के लिए। बड़ा आश्चर्य लगता है, तो ये साधु संघ। और फिर प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव, कैसे भी इनका भाग उदय हुआ था क्यों नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि का आना बहुत बड़े भाग्य की बात है, साधु का दर्शन बहुत दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है भक्तों का संग, बहुत दुर्लभ है भक्तों का संग। भजहु रे मन नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। सत्संग कौन करेगा, साधु को होगा तब सत्संग करेगा ना, नहीं तो अटसंग चलता रहता है सब जगह पे। सत्संग तो साधु होगा तब होगा। सत्संग का मतलब सत्य, भगवान के साथ संग करा दे। भगवान की कथा जब हम करते हैं तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा भगवान के साथ संग होता है कथा के माध्यम से, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब भगवान के साथ संग होना, रिश्ता होना, भगवान हमारे सोच में विचार में वचन में कर्म में भगवान बस जाना, उसको सत्संग कहते। तो नारद जी इनके ऊपर कृपा करके आ गए। तम दृष्ट्वा वृडीता देवियों, लड़कियों ने नारद को देख लिया, लड़कियों ने नारद को देखा, विवस्त्र कपड़ा नहीं पहना हुआ था लड़कियों को, लेकिन डर लगा, शाप संकित है कहीं नारद शापन दे दे, लड़कियों को बहुत डर लगा। एकदम वासांसी, एकदम कपड़े उठाए, परिधो शीघ्रम, बहुत जल्दी कपड़े सर के ऊपर ढक दिए लड़कियों ने। लड़कियों की नजर जैसे भी नारद के ऊपर पड़ी, निर्वस्त्र थे लेकिन एक मिनट के अंदर उन्होंने जल्दी कपड़ा ढका, क्योंकि साधु कहीं साफ न दे दे नारद, उनको तो डर लगा। लेकिन ये विश्वस्त्रो नैव गुह्यको, ये जो गुह्यक के बेटे थे, ये जो कुबेर के दोनों बेटे थे ना, ये नंगे के नंगे खड़े थे। इन्होंने नारद का कोई नोटिस नहीं लिया, घूमते रहते साधु, कौन पूछता है इसको, कहां जा रहे हो, क्यों कपड़े पहन रहे हो, कौन आ गया, ये तो मस्त थे। तो ये तौ दृष्ट्वा मदिरा मतो, अब नारद जी कहते हैं, नारद जी ने उनको देखा तो कैसे लग रहे थे, मद्रा मदिरा मतो, पहले तो वो शराब के नशे में थे, और दूसरा कौन सा नशा था, श्रीमद अंधो, श्रीमद अंधो, श्री का मतलब पैसा धन, मद का मतलब उसका नशा, अंधो सबसे बड़ा नशा जो आदमी को अंधा करता है वो धन का है। श्रीमद अंधो सुर आत्मजो, और तीसरा देवता के पुत्र होते हुए भी, सुर आत्मजो देवता के पुत्र थे, कुबेर के बेटे थे, दिग्पाल है कुबेर, भगवान ने उसको ये बड़ा स्थान दिया है, उसके बेटे होते हुए भी धन का नशा था और शराब पिया हुआ था। तय अब नारद के हृदय में आया करुणा, तयोर अनुग्रह अर्थाय, उनके ऊपर कृपा करने के लिए अनुग्रह अर्थाय, पढ़ते हैं ना दामोदर अष्टक में, ग्रहण के आगे अ है, अनुग्रहण मतलब कृपा के लिए, नारद उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। क्यों नारद कृपा करना चाहता है, ये साधु का स्वभाव है। और फिर नारद देव ऋषि है, देवताओं का गुरु है, तो देवता के बेटे खराब हो रहे हैं तो नारद उनको अपने यजमान समझता है ना, कि ये हमारे शिष्यों के बेटे हैं तो इनको सुधारना हमारा धर्म है। एक तो साधु का लक्षण ऐसा होता है, आदमी कैसा भी हो लेकिन साधु उसको सुधारते। कहते कोई साधु रास्ते में जा रहा था, किसी स्कॉर्पियन बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा, साधु को उसके ऊपर भी दया आई, हाथ में ऐसे उठा के बाहर फेंकने लगा तो बच्चू ने काटा, तो हाथ ऐसे हुआ वापस पानी में गया, दोबारा उठाया, दोबारा काटा, सोचा छोड़ना चाहिए, फिर सोचा इसका तो काम ही काटना है लेकिन मेरा काम तो बचाना है ना, आखिरी बार निकाला, उठाया, बाहर फेंका और आगे चला गया। तो जो दुख देते हैं उनको भी साधु सुख देते, नहीं तो ऐसा दृश्य साधु के लिए तो बहुत बड़ा हानिकार है। कोई नंगे लड़के लड़कियां कहीं नहाते हो, वहां से साधु जाए, ये साधु के लिए अच्छा तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी अनुग्रह अर्थ आया, उनके ऊपर अनुग्रह करना था। और नारद ने देखा कि मुझे क्रोध तो नहीं आया इनके ऊपर, देखूं तो क्रोध में तो किसी की हानि होती है, इफ यू बिकम एंग्री देन यू वांट टू डैमेज समबडी। नारद ने कहा कहीं क्रोध तो मुझे इनके ऊपर नहीं आया, मैं इनका अनुग्रह ही करना चाहता हूं ना। उसके लिए नारद ने वीणा लेकर थोड़ा गाना शुरू करा, जुगाओ कुछ गाना शुरू किया, नहीं नहीं मैं गा सकता हूं, इसका मतलब क्रोध नहीं, क्रोध में आदमी गा नहीं सकता है, आदमी क्रोध में हो तब गा नहीं सकता है, गाली देता हुआ आदमी कभी गाएगा ये संभव नहीं। तो नारद ने देखा मुझे क्रोध तो नहीं, शापम दास्यम इदम जगाओ, और एकदम नारद जी के मुख से निकला तो शाप, लेकिन इनके लिए बड़ा वरदान हो गया। साधु शाप भी देता है तो उसमें उसका भला होता है। और क्या बोला नारद वाच, नारद जी बोला, ये नारद का गीता है, इसको कल तक चलेगी, ये भी नारद की शिक्षा पहली याद करना, ये आप सबके प्रचार के लिए बहुत जरूरी है, पहले अपने जीवन के लिए फिर प्रचार के लिए। न हे अन्यो जुष्टो जोशयान बुद्धि भ्रमो रजो गुण, इस दुनिया में भोगने के लिए जो आदमी के बुद्धि को इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट करके आकर्षण करती है वो रजोगुण में इससे ज्यादा और कोई नहीं है, क्या श्रीमद अंध। धन का नशा। धन का नशा सबसे बड़ा इस दुनिया में आदमी को भोग की तरफ प्रेरित करता है, एंजॉयमेंट के लिए प्रेरित करता है। श्रीमदाद अभिचाद, चार नशे बताए गए हैं, उन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? एक तो सुंदर शरीर होना, अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छी विद्या होना, ये तीन, और चौथा पैसा धन। ये चार चीजें, इनको कुंती महारानी कहते हैं ये भक्ति के बाधक हैं। इनको निष्कंचन, इन सबको, इन उपाधियों से बचना चाहिए, ये सब डेजिग्नेशन से बचना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति होगी। तो इन चारों में सबसे ज्यादा धनमदन, इस धनमदन में कौन सी खराबी है? अब सुन लीजिए, यत्र स्त्री द्यूतम आसवः, जहां पैसा होगा वहां पहले तीन शब्द का उत्पादन लिखे सीधे से, वाइन वुमन एंड गैम्बलिंग। नशा भी वहां होगा, शराब वहां होगा, स्त्री होगी और जुआ होगी। ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं नारद के पहले शिक्षा की। नारद मुनि सेड, अमंग ऑल द अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, द अट्रैक्शन ऑफ रिचेस bewilder one's intelligence more than having beautiful bodily future, taking birth in an aristocratic family and being learned। ये चार चीजें आदमी को अहंकार पैदा करती है। सुंदर कोई आदमी होगा तो उसका अपना एक अहंकार होता है, और दूसरा बड़ा पढ़ा लिखा होगा तो वो भी नीचे बैठेगा, नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं PhD हूं, और बड़े कुल में मैं ब्राह्मण हूं, मैं गोसाई हूं, चाहे भले घोड़ा चराता हो लेकिन गोसाई हूं तो नीचे नहीं बैठे, खड़ा रहेगा। लेकिन इन तीनों में धन का अंधा सबसे ज्यादा, धन का नशा सबसे खतरनाक है। इसलिए ब्राह्मण धन संग्रह कभी नहीं करते हैं। प्रभुपद ने कभी कहा, वी आर गेटिंग एवरी डे 100 million, बट स्टिल वी आर beggars, because next day we spend everything. Again we need the new. भगवान की लक्ष्मी, भगवान की सेवा में लगाओ, अपने पास नहीं रखना। कितना भी हो, then still we have to always भगवान की सेवा के लिए लाओ, भगवान के लगाओ, अपने पास मत रखो। खड़ा हुआ पानी डुबाता है, मानो है चलती हुई नदी में नहाओगे तो हो सकता है किनारे पे फेंक दे, लेकिन जहां रिजर्वर वाटर का रिजर्वायर होगा ना, वो डुबाएगा। खड़ा पानी डुबाएगा, पड़ा हुआ पैसा बिगाड़ेगा। घर में पैसा ज्यादा होगा तो बच्चे जरूर बिगड़ेंगे। पैसा, खड़ा पैसा बिगाड़ेगा, कठा किया पैसा बिगाड़ेगा, खड़ा हुआ पानी डुबोएगा, ये कहावत है। इसलिए खड़े हुए पानी में नहाने नहीं जाना चाहिए ज्यादा, पता नहीं आदमी उसमें डूबने की संभावना ज्यादा होती है। और पैसा कठा करना और बच्चों को पता लग जाए तो बच्चे बिगड़ने में देर नहीं करते, और ये कुबेर के बच्चों को पता था। तो आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, वेन वन इज अनएजुकेटेड बट फॉल्सली पफ्ड अप बाय द वेल्थ, द रिजल्ट इज दैट वन एंगेजेस इज वेल्थ इन एंजॉइंग वाइन वुमेन एंड गैम्बलिंग। अब आप देख लो, सारा दिन लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, गन्ने काटते हैं, लेकिन शाम को 200 रुपया भी हाथ में आएगा तो सीधा शराब वाले दुकान पे जाके खड़ा होगा। ये सच है कि नहीं? आपके आयरलैंड में जितने शराब के दुकान है, मेरे ख्याल में इतने बॉम्बे में भी नहीं है। बॉम्बे में ऐसे 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इतने शराब के दुकान। यहां तो बैंगन बेचने वाला भी शराब की बोतल अंदर रख के रखी है दुकान, उसने परमिशन लेके रखी है कि बैंगन वाला भी शराब लेके जाएगा। या मैं देखा जनरल स्टोरों के ऊपर भी शराब रखा हूं। कहा एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, हमारे प्रचार का प्रभाव ये होना चाहिए, आधे दुकान शराब के मॉरिशस में बंद होने चाहिए, तब समझना चाहिए कि इस कान का प्रचार हो रहा है। ये तो हमारे मंदिर के सामने खुलने वाला है थोड़े दिन कहते मंदिर के पास खोलने का मन ला में है कि किसी स्कूल या मंदिर के पास नहीं खोला जा सकता। तो कोई आदमी खोल रहा था तो कहे मंदिर के पास है, तो मंदिर के पंडित जी ने साइन कर दी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसका अर्थ यह था कि मेरे को बोतल मुफ्त में देता रहेगा इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नशा है। ये चारों चीजें कैसे एक दूसरे के साथ साथ चलती है। एक आदमी था, कैसा आदमी था, बड़ा बदमाश, लेकिन था धर्मी, धर्म का नेता था, किसी का लीडर, रिलीजियस लीडर था कोई, लेकिन बड़ा बदमाश था, राजा के खिलाफ था, गवर्नमेंट के खिलाफ था। अब क्या करना चाहिए इसको, इससे अगर ऐसे जेल में बंद कर देंगे तो ये बड़ा झगड़ा करेगा, इसकी पाया लोग इसके पीछे आएंगे, परेशान करेंगे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। उसको निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया किंग ने कि आप आज हमारे पास आइए, रात हमारे पास रहिए। अब ये तो ना नहीं कर सकता है। आया, बोला आप हमारे मेहमान हो, आज यहीं रहिए, ये देखो चार कमरे हैं, आप इनमें से कोई एक चीज जरूर स्वीकार करना, तब हम समझने कि आप हमारे मेहमान हैं, यू हैव एक्सेप्टेड अवर इनविटेशन। अच्छा, पहले कमरे में गया, सब प्रकार का शराब सजाया हुआ था, बोला ये मैं रिलीजियस लीडर हूं, शराब पीऊंगा कल तो पता लगेगा, मेरी तो बदनामी होगी। दूसरे कमरे में गया, जो नहीं खाने वाला सारा वेराइटीज मीट की पड़ी थी, जैसे मानो कोई कहे कि हिंदू साधु था तो गाय थी, कि मुस्लिम साधु था तो सुअर पड़ा था, ऐसी चीजें पड़ी थी कि वो खाएगा तो कल बदनाम हो जाएगा मार्केट में। तीसरे कमरे में गया तो नौजवान लड़की और इन मूर्खों की तरह जो इनके साथ जैसे थी निर्वस्त्र खड़ी थी, और उसको कैसे भी पकड़ के आलिंगन करना चाहते, वो वापस भागा, भाई ये तो मर गया। चौथे कमरे में जाके देखता है तो फांसी का फंदा लटक रहा है कि इसमें गला डालो। क्या चीज मैं स्वीकार करूं, सोच के बड़ा सोचा, बोलो कोई नहीं, थोड़ी बियर पी लेता हूं, इसमें क्या होगा, पानी तो है, राजा को नाराज भी नहीं किया जा सकता। थोड़ा पिया और पीने के बाद पता नहीं लगा, जब पहले आप पीते हो फिर वो आपको पीना शुरू करेगी, हाँ? पहले आप शराब पीते हो फिर शराब आपको पीती है, फिर वो इतना पिया और शराब पीने के बाद भूख लगी, तब तो दूसरे कमरे में गया, जो भी था वो सब खाया। अब शराब पीने और खाने के बाद तीसरे कमरे में गया और इस तरीके से आज भी बदमाशी की। सुबह हुई तो उठा तो देखा मैंने तीनों गलत काम किए, कल सुबह पता लगेगा दुनिया को तो मेरी बदनामी होगी, अब क्या करना चाहिए, अपने आप जाके फांसी खाई और सुबह लटका हुआ मिला, पब्लिक को दिखाया, देखो हमने तो इसको ये अपने आप ये सुसाइड कर दिया इसने। तो असल में ये तीन चीजों में जो एक चीज में गया वो समझ लो सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, असल में दिखता नहीं है लेकिन आत्महत्या कर। और बहुत से लोग इस दुनिया में आत्मा की हत्या ही कर रहे हैं। और हमारे प्रभुपाद जी का स्कान का उद्देश्य विशेष रूप से है कि लोगों को आत्महत्या करने से बचाना। आप कहीं से जाएं, अच्छे आदमी हो, किसी आदमी को डूबता देखें तो उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालना चाहिए। तो दुनिया आत्महत्या कर रही है, बहुत बुरे रास्ते के ऊपर जा रही है, हमारे को बहुत परिश्रम करके प्रचार करना पड़ेगा, दया हृदय में धारण करके लोगों का उद्धार करने के लिए प्रचार करना पड़ेगा। शराब के दुकान के बाहर बैठ के और हरि कीर्तन करना पड़ेगा, जाने वाले को ये कथा सुनानी पड़ेगी, और शराब पीने के बाद जो बुराइयां होती है वो सब दिखानी पड़ेगी। दुकानदार हमारे से झगड़ा करेगा लेकिन उसका उद्धार करना, नारद ऐसे ही कर रहे। अब क्या श्राप देगा नारद, कल हम नारद की गीता को आगे पढ़ेंगे कि नारद जी किस तरीके से आगे क्या बोल रहे हैं। लेकिन नारद जी की ये दो शिक्षाएं तो आपने सुन ली। पैसा भगवान की सेवा में, प्रभुपाद ने एक वर्ड लिखा है अनएजुकेटेड, इसका मतलब जो आदमी शिक्षित नहीं है कि पैसा लक्ष्मी है, विष्णु की सेवा में लगनी चाहिए। लक्ष्मी को भोगने वाला रावण है, सीता को उठा के गया और रावण को छोड़ के, राम जी को छोड़ के सीता को भोगना चाहा, तो इसको रावण बोलते हैं। जो लोग केवल पैसे को भोगना चाहते हैं और भगवान जो उसका मालिक है उसको भूल जाते हैं, उनकी दशा रावण जैसी होती है। सोने की लंका होते हुए भी कुछ पले नहीं पड़ता है। इसलिए बुद्धिमानी से धन को सदउपयोग धन का करना चाहिए। अब आगे नारद की कथा को कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसका प्रसाद है आज भाई? मंदिर का प्रसाद है ना? हरे कृष्ण।